एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। याद रहूंगा, यीशु ने कहा कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हथेली में चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा।
अपनी हथेली में चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा।
अपनी आँखों की पुतली समा रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं, हम तेरे पास आते हैं पिता, हमें तेरे वचनों से आशीषित कर। मेरे श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जैसे वे तेरे वचनों को सुनते हैं उनके मनों को खोल दे और तेरे पवित्र आत्मा से उन्हें समझने के लिए मदद कर और तेरे राह में चलने के लिए भी मदद कर पिता। और मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तेरे वचनों को बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है खोई हुई भेड़। यह दृष्टांत हम प्रभु यीशु मसीह का जो बतलाया था उसने उसको हम पाते हैं लुका 15 अध्याय का 1-10 में। जब कर वसूलने वाले और पापी लोग मसीह के पास इकट्ठे हुए तो रबियों ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, यह आदमी पापियों को स्वीकार करता है और उनके साथ खाता है। इस आरोप से उन्होंने यह संकेत दिया कि मसीह पापी और नीच लोगों के साथ संगति करना पसंद करते थे और उनकी दुष्टता के प्रति असंवेदनशील थे। रबी यीशु से निराश हो गए थे। उन्हें इस बात से भी गुस्सा आया कि जो लोग रबियों के प्रति केवल तिरस्कार दिखाते थे और जो कभी आराधनालयों में नहीं देखे जाते थे, वे यीशु के इर्द गिर्द झुंड बनाकर खड़े हो जाते थे और उसके वचनों को ध्यान से सुनते थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने उस शुद्ध उपस्थिति में केवल निंदा महसूस की। फिर यह कैसे हुआ कि चुंगी लेने वाले और पापी यीशु की ओर आकर्षित हुए? वे नहीं जानते थे कि इसका स्पष्टीकरण उन्हीं शब्दों में छिपा है जो उन्होंने तिरस्कारपूर्ण आरोप के रूप में कहे थे। यह व्यक्ति पापियों को स्वीकार करता है। यीशु के पास आने वाली आत्माओं ने उनकी उपस्थिति में महसूस किया कि उनके लिए भी पाप के गड्ढे से मुक्ति का मार्ग है। फरीसियों के पास उनके लिए केवल तिरस्कार और निंदा थी, लेकिन मसीह ने उन्हें परमेश्वर के बच्चों के रूप में अभिवादन किया, जो वास्तव में पिता के घर से अलग हो गए थे लेकिन पिता के दिल से भूले नहीं गए थे, और उनके दुख और पाप ने उन्हें और अधिक उसकी करुणा का पात्र बना दिया। जितना वे उससे दूर भटक गए थे, उतने ही अधिक उनकी इच्छा और उनके उद्धार के लिए उतना ही बड़ा बलिदान हुआ। जर्दन के पूर्व में फैले हुए पठार झुंडों के लिए प्रचुर मात्रा में चारागाह प्रदान करते थे, और घाटियों और जंगली पहाड़ियों के बीच से भटकते थे। बहुत सी खोई हुई भेड़े जिन्हें चरवाहे की देखभाल में ढूंढा जाना था और वापस लाया जाना था। यीशु के आसपास के लोगों में चरवाहे थे, और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने झुंड और पशुओं में पैसा लगाया हुआ था, और सभी उसके दृष्टांत की सराहना कर रहे थे। यीशु ने कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए तब तक खोजता ना रहे? यीशु ने कहा, ये आत्माएं जिन्हें तुम तुच्छ समझते हो परमेश्वर की संपत्ति हैं। सृष्टि और छुटकारे के द्वारा वे उसकी हैं, और वे उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों से प्रेम करता है, और यदि एक भी भेड़ गायब हो जाए तो उसे चैन नहीं मिलता, वैसे ही अनंत रूप से उच्च स्तर पर परमेश्वर हर बहिष्कृत आत्मा से प्रेम करता है। मनुष्य उसके प्रेम के दावे को अस्वीकार कर सकते हैं, वे उससे दूर भटक सकते हैं, वे कोई दूसरा स्वामी चुन सकते हैं, फिर भी वे परमेश्वर के हैं, और वह अपनी भेड़ों को वापस पाने के लिए ललायित है। वह कहता है, जैसे चरवाहा उस दिन अपने झुंड को ढूंढता है, जब वह अपनी भेड़ों के बीच होता है तो बिखरी हुई होती है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उन्हें उन सभी स्थानों से निकालूंगा जहां वे बादल और अंधेरे दिन में बिखरी हुई हैं। यह हम पढ़ते हैं एजिकियल 34:12 में। दृष्टांत में चरवाहा एक भेड़ की तलाश में निकलता है, वह सबसे छोटी भेड़ जिसकी गिनती की जा सकती है। इसलिए अगर एक भी खोई हुई आत्मा होती तो मसीह उसके लिए मरने के लिए आता। भेड़ जो झुंड से भटक गई है वह सभी प्राणियों में सबसे असहाय है। उसे चरवाहे को खोजना होगा, क्योंकि वह वापस अपना रास्ता नहीं खोज सकती। ऐसा ही उस आत्मा के साथ भी है जो परमेश्वर से दूर भटक गई है। वह खोई हुई भेड़ की तरह असहाय है, और जब तक ईश्वरीय प्रेम उसे बचाने के लिए नहीं आता, वह कभी भी परमेश्वर तक अपना रास्ता नहीं खोज सकता। चरवाहा जब पाता है कि उसकी एक भेड़ खो गई है, तो वह सुरक्षित रूप से रखे गए झुंड की ओर लापरवाही से नहीं देखता और कहता है, मेरे पास 99 भेड़े हैं और भटकी हुई एक भेड़ को ढूंढने में मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, उसे वापस आने दो और मैं भेड़शाला का द्वार खोलकर उसे अंदर आने दूंगा। नहीं, जैसे ही भेड़ भटक जाती है, चरवाहा दुख और चिंता से भर जाता है। वह झुंड की गिनती करता है और उनकी गिनती फिर करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि एक भेड़ खो गई है, तो वह नहीं सोता और बाकी 99 भेड़ों को बाड़े में ही छोड़ देता है और भटकी हुई भेड़ों की तलाश में निकल जाता है। रात जितनी अंधेरी और तूफानी होती है और रास्ता जितना खतरनाक होता है, चरवाहे की चिंता उतनी ही बढ़ जाती है और उसकी खोज उतनी ही गंभीर हो जाती है। वह उस एक खोई हुई भेड़ को खोजने का हर संभव प्रयास करता है। वह कितनी राहत महसूस करता है जब दूर से उसकी पहली हल्की चीख सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए वह सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ता है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर खाई के बिल्कुल किनारे तक जाता है। इस तरह वह खोज करता है, जबकि चीख जो धीमी होती जा रही है उसे बताती है कि उसकी भेड़ मरने के लिए तैयार है। आखिरकार उसके प्रयास को पुरस्कृत किया जाता है, खोई हुई भेड़ मिल जाती है। तब वह उसे डांटता नहीं है क्योंकि उसने उसे बहुत तकलीफ दी है। वह उसे चाबुक से नहीं भगाता, वह उसे घर ले जाने के लिए कोशिश भी नहीं करता। अपनी खुशी में वह कांपते हुए प्राणी को अपने कंधों पर उठा लेता है। अगर वह चोटिल और घायल है तो वह उसे अपनी बाहों में समेट लेता है, उसे अपनी छाती से लगा लेता है ताकि उसके अपने दिल की गर्मी उसे जीवन दे सके। इस कृतज्ञता के साथ उसकी खोज व्यर्थ नहीं गई, वह उसे वापस बाड़े में ले जाता है। ईश्वर का शुक्र है, उन्होंने हमारी कल्पना में भेड़ों के बिना लौटने वाली दुखी चरवाहे की कोई तस्वीर पेश नहीं की है। दृष्टांत विफलता की बात नहीं करता बल्कि सफलता और पुनर्प्राप्ति में खुशी की बात करता है। यहाँ ईश्वरीय गारंटी है कि परमेश्वर के झुंड की भटकी हुई भेड़ों में से एक भी नजरअंदाज नहीं की जाती, एक भी बिना सहारे के नहीं छोड़ी जाती। हर कोई जो छुड़ौती के लिए प्रस्तुत होगा, मसीह भ्रष्टाचार के गड्ढे और पाप की झाड़ियों से बचाएगा। हे निराश आत्मा, हिम्मत रख, यद्यपि तूने दुष्टता की है, यह मत सोच कि शायद ईश्वर तुझे क्षमा कर देगा। आपके अपराधों को क्षमा करता है और आपको अपनी उपस्थिति में आने की अनुमति देता है। परमेश्वर ने पहली प्रगति की है। जब आप उसके विरोध विद्रोह कर रहे थे तो वह आपको खोजने के लिए आगे बढ़ा। चरवाहे के कोमल हृदय के साथ उसने 99 को छोड़ दिया और जो खो गया था उसे खोजने के लिए जंगल में चला गया। आत्मा जो चोटिल और घायल और नष्ट होने के लिए तैयार थी, वह अपने प्रेम की बाहों में उसे घेर लेता है और खुशी से उसे सुरक्षा की गोद में ले जाता है। यहूदियों ने सिखाया कि पापी को परमेश्वर का प्रेम मिलने से पहले उसे पहले पश्चाताप करना चाहिए। उनके विचार में पश्चाताप एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त करता है, और यही वह विचार था जिसने फरीसियों को आश्चर्य और क्रोध में चिल्लाने के लिए प्रेरित किया। यह व्यक्ति पापियों को स्वीकार करता है। उनके विचारों के अनुसार उसे केवल पश्चाताप करने वालों को ही अपने पास आने देना चाहिए, लेकिन खोई हुई भेड़ के दृष्टांत में मसीह सिखाता है कि उद्धार हमारे द्वारा परमेश्वर की खोज करने से नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा हमें खोज करने से मिलता है। कोई भी समझदार नहीं है, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, वे सब भटक गए हैं, कहता है रोमियो की पत्री में 3:11-12 पद में। हम पश्चाताप इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, बल्कि वह हमें अपना प्रेम इसलिए प्रकट करता है कि हम पश्चाताप करें, कि हम पश्चाताप करें। जब भटकी हुई भेड़ को आखिरकार घर लाया जाता है तो चरवाहे की कृतज्ञता खुशी के मधुर गीतों में अभिव्यक्त होती है। वह अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ खुशी मनाओ क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भेड़ को पा लिया है। इसलिए जब भेड़ों के महान चरवाहे को एक भटका हुआ व्यक्ति मिल जाता है तो स्वर्ग और पृथ्वी धन्यवाद और खुशी में एक हो जाते हैं। स्वर्ग में एक पापी के पश्चाताप करने पर उतनी ही खुशी होती है जितनी 99 धर्मी लोगों के पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। मसीह ने कहा, तुम फरीसियों अपने आप को स्वर्ग के पसंदीदा मानते हो, तुम अपने आप को अपनी धार्मिकता में सुरक्षित समझते हो, तो जान लो कि अगर तुम पश्चाताप की आवश्यकता नहीं समझते हो तो मेरा मिशन तुम्हारे लिए नहीं है। ये गरीब आत्माएं जो अपनी गरीबी और पापपूर्णता को महसूस करती हैं, वही हैं जिन्हें मैं बचाने आया हूँ। स्वर्ग के स्वर्गदूत इन खोए हुए लोगों में रुचि रखते हैं जिन्हें तुम तुच्छ समझते हो। जब इनमें से कोई आत्मा मुझसे जुड़ती है तो तुम शिकायत करते हो और उपहास करते हो, लेकिन जान लो कि स्वर्गदूत आनंदित होते हैं और विजय का गीत ऊपर के दरबारों में गूंजता है। रबियों का कहना था कि जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने वाले का नाश होता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, लेकिन यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर के लिए नाश का कार्य एक अजीब कार्य है। जिस बात से स्वर्ग प्रसन्न होता है वह है उन आत्माओं में परमेश्वर की अपनी छवि की पुनर्स्थापना जिन्हें उसने बनाया है। जब कोई व्यक्ति जो पाप में बहुत दूर तक भटक गया है परमेश्वर के पास लौटने की कोशिश करता है तो उसे आलोचना और अविश्वास का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग हैं जो संदेह करेंगे कि उसका पश्चाताप सच्चा है या नहीं, या फुसफुसाएंगे उसके पास कोई स्थिरता नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कि वह टिक पाएगा। ये लोग परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि शैतान का काम कर रहे हैं जो भाइयों पर आरोप लगाने वाला है। अपनी आलोचनाओं के माध्यम से दुष्ट व्यक्ति उस आत्मा को हतोत्साहित करने और उसे आशा और परमेश्वर से और भी दूर करने की उम्मीद करता है। पश्चाताप करने वाले पापी को खोए हुए व्यक्ति की वापसी पर स्वर्ग में होने वाली खुशी पर विचार करना चाहिए। उसे परमेश्वर के प्रेम में आराम करने दे और किसी भी मामले में फरीसियों के तिरस्कार और संदेह से निराश ना हो। रबियों ने मसीह के दृष्टांत को चुंगी लेने वालों और पापियों पर लागू होने वाले रूप में समझा, लेकिन इसका एक व्यापक अर्थ भी है। खोई हुई भेड़ों से मसीह न केवल व्यक्तिगत पापी का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि उस एक दुनिया का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसने धर्म त्याग किया है और पाप के कारण बर्बाद हो गया है। यह दुनिया उन विशाल प्रभुत्वों में एक अनुमात्र है जिन पर परमेश्वर शासन करता है। फिर भी यह छोटी सी गिरी हुई दुनिया, एक खोई हुई भेड़, उसकी दृष्टि में उन 99 लोगों से अधिक मूल्यवान है जो झुंड से भटके नहीं हैं। मसीह स्वर्गीय न्यायालयों में प्रिय सेनापति अपने उच्च पद से नीचे उतरकर पिता के पास जो महिमा थी उसे त्याग दिया ताकि एक खोई हुई दुनिया को बचाया जा सके। हमारा खोई हुई दुनिया जो पाप किया, इसके लिए उसने ऊंचे स्थान पर पाप रहित दुनिया को छोड़ दिया। उन 99 लोगों को जो उससे प्रेम करते थे और इस धरती पर आया ताकि हमारे अपराधों के लिए घायल और हमारे अधम के लिए कुचला जाए। हम पढ़ते हैं यह यशायाह 53:5 में, परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र में दे दिया ताकि वह खोई हुई भेड़ों को वापस पाने का आनंद प्राप्त कर सके। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। यह हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3:1 में। और मसीह कहते हैं, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। अपने शिष्यों के विषय में यीशु मसीह कहता है। यह हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17:18 में। मसीह के कलेशों की जो कमी रह गई है उसे पूरा करने के लिए उसकी देह के लिए जो कलीसिया है, कुलिसियों 1:24, हर आत्मा जिसे मसीह ने बचाया है उसे खोई हुई लोगों के उद्धार के लिए उसके नाम पर काम करने के लिए बुलाया गया है। कलीसिया के हर सदस्य जो बचाए गए हैं जिसे यीशु ने प्रेम किया है और उन्हें उद्धार का अनुभव दिया है, उनका काम है कि वे भी जाएं दुनिया में और खोए हुए लोगों को, खोए हुए भेड़ों को प्रभु के पास लाएं। इस कार्य को इसराइल में उपेक्षित किया गया था, क्या यह आज उन लोगों द्वारा उपेक्षित नहीं किया जाता है जो मसीह के अनुयायी होने का दावा करते हैं? यदि हम यीशु मसीह के प्रेम को पा लिए हैं, उसके उद्धार को हम पाए हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम भी अपने खोए हुए दुनिया में दूसरे लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को बतलाएं कि वे भी यीशु मसीह के झुंड में आए, वे भी यीशु मसीह के पास आए और उद्धार का अनुभव करें और वे भी स्वर्गीय राज में बचाए जा सके। प्यारों भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता हम लोगों से अति प्रेम किया है। उसने हम लोगों को बचाने के लिए अपना प्रिय पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। स्वर्ग को छोड़ करके यीशु मसीह आया जब हम पाप में खो गए थे। यह दुनिया पाप करके पाप में खो गई थी। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए प्रेम से अपना पुत्र को भेजा और हमें बचाया है। आइए हम भी उसके प्रेम को अनुभव करके दूसरे लोगों को इस सुसमाचार को बतलाएं। और यदि मेरे श्रोताओं में कोई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आप परमेश्वर से भटके हुए हैं, परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर चले गए हैं, परमेश्वर आपको आज भी बुलाता है। इस समय यीशु मसीह में आपको अनुग्रह प्रदान करता है। आप इतने दूर नहीं हैं कि आप बचाए नहीं जा सकते हैं। हर एक व्यक्ति उसके लिए मूल्यवान है। एक खोई हुई भेड़ के लिए जान देने के लिए यह सच्चा चरवाहा यीशु मसीह इस धरती पर आया। आपको प्रेम करता है, आपको बुलाता है। आइए हम आज उसे अपनाएं, उसके पास आ जाएं और परमेश्वर हमें बचाएंगे। परमेश्वर आप सबों को और हम सबों को बहुतायत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, यह कहानी, यह दृष्टांत जिसके द्वारा यीशु मसीह ने सिखाया कि इस धरती में हर एक खोई हुई भेड़ को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जान देने आया। जो कोई भी बचने चाहता है, तेरे पास आने चाहता है, तू उसे बचाने के लिए खुशी पाता है। पिता परमेश्वर, हमें पश्चाताप दे और तेरा पवित्र आत्मा दे कि हम तेरे पास आ सकें और तेरे राज्य में बचाया जा सके। मैं मेरे हर एक श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो तेरे पास आना चाहते हैं, तेरे प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, तेरा आत्मा उनमें काम करे, तेरा आत्मा उन्हें लाए पिता तेरे पास, कि वे तेरे राज्य में बचाया जा सके।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenchrist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।